राधिका के सो जाने के बाद आयशा ने उसका मोबाइल लिया और डॉक्टर मर्चेंट को मैसेज किया। वो किसी भी हाल में जल्द से जल्द नक्श और डॉक्टर मर्चेंट की मीटिंग फिक्स करना चाहती थी। डॉक्टर मर्चेंट के कोई जवाब नहीं देने पर आयशा ने उन्हें अपने नंबर से कॉल कर लिया। कॉल के दूसरी तरफ जब उसने इशिका की आवाज़ सुनी तो आयशा के हाथ से मोबाइल छूट गया। वो चौंक गई थी। आयशा मन ही मन बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता है। इशिका डॉक्टर मर्चेंट कैसे हो सकती है? हो सकता है कोई गलतफहमी हो, फिर से बात करके देखती हूँ। आयशा ने जल्दी से मोबाइल उठाया और अपने कान के लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ इशिका भी हैरान थी। वो बोली, आयशा तुम मिसेस सिंघालिया के मोबाइल के साथ क्या कर रही हो? इशिका की आवाज़ वो कभी नहीं भूल सकती थी। एक बार फिर से उसकी आवाज़ सुनने पर आयशा को कन्फर्म हो गया कि कॉल की दूसरी तरफ इशिका ही थी। इस वक्त उसकी हालत ऐसी हो रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आयशा ने जैसे तैसे खुद के इमोशंस को काबू किया। उसने खुद को संभाल कर सख्ती से कहा, क्या ये तुम्हारे नंबर हैं इशिका? ये किस तरह का सवाल हुआ? मेरे नंबर पर कॉल करोगी तो मैं ही बात करूंगी ना, इशिका ने जवाब दिया। आयशा ने गहरी सांस ली। उसने मोबाइल में फिर से चेक किया तो नंबर सिर्फ मर्चेंट के नाम से सेव था। आयशा को सच्चाई का एहसास हो गया था। उसे लगा जल्दबाजी में वो डॉक्टर मर्चेंट के सही नंबर नहीं ले पाई। आयशा ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा, मैं ऐसी गलती कर भी कैसे सकती हूँ? ये सारा कन्फ्यूजन इस लड़के की वजह से हुआ है। मर्चेंट राधिका का सरनेम था जो बचपन में स्कूल एडमिशन के वक्त आयशा के नाम के साथ सेकंड सरनेम के तौर पर लगा था। इशिका का एडमिशन भी साथ में एडमिशन करवाने गए तब इशिका के नाम के साथ भी सेकंड सरनेम मर्चेंट ऐड करवाया गया था। तुम कितनी चालाक हो, मुझे लगा था कि मॉम का सरनेम हटा दिया होगा, लेकिन आज भी उनका सरनेम अच्छा खासा इस्तेमाल कर रही हो। तुम मेरी मॉम के सरनेम के लायक नहीं हो, आयशा गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोली। एक पल के लिए इशिका की नज़रें झुक गई थी। वो खुद नहीं समझ पाई कि उसने आज तक राधिका का सरनेम हटाया क्यों नहीं था। शायद इसकी वजह ये थी कि वो राधिका को अपनी माँ की तरह मानती थी और उनका सरनेम पूरे हक से इस्तेमाल कर रही थी। आज आयशा के कहने पर उसे एहसास हुआ कि वाकई उसका इस सरनेम पर कोई हक नहीं है। मालविका की वजह से राधिका की इतनी तबीयत खराब हुई और वो उदास रहने लगी। इशिका जल्द ही अपनी उस कश्मकश से बाहर निकल आई। उसने बेरुखी से कहा, क्या तुमने मुझे यही सब सुनाने के लिए कॉल किया है? बिल्कुल नहीं, आयशा ने बेरहमी से कहा। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि भले ही बड़ी दादी के जरिए तुमने अभिमन्यु राजवंश को अपने काबू में कर लिया है, लेकिन तुम उनकी मिस्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं हो। तुम भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह निकली ना, एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी खराब कर दी। कितने पैसे देता है वो तुम्हें ये सब करने के? अपनी खूबसूरती का फायदा अच्छे से उठा रही हो तुम। इशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आयशा यहीं पर नहीं रुकने वाली थी। वो आगे बोली, मैं तुम्हारी जैसी कभी नहीं बनूंगी। तुम्हें लोग उन्हीं नज़रों से देखेंगे जैसे तुम्हारी माँ को देखते हैं, दूसरों की शादी खराब करने वाली। मैं लीगली नक्श से शादी करूंगी, राजमंच खानदान की बहू बनूंगी और लोग मेरी इज्जत भी करेंगे। मुबारक हो, इशिका ने बिना किसी भाव के कहा। आयशा को लगा कि उसका इतना सब कुछ कहने के बाद इशिका गुस्से में चिल्लाएगी या उसे भला बुरा करेगी, लेकिन इशिका ने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो और चिढ़ गई। वो गुस्से में बोली, पता है अमीर परिवार की बहू बनने के लिए सिर्फ पैसे होना ही काफ़ी नहीं होता, आपके पास पावर और पोजीशन होनी भी ज़रूरी है। मेरे पास डॉक्टर मर्चेंट से कॉन्टैक्ट है जिससे मैं नक्श का फ़ायदा करूंगी। मैं हमेशा तुमसे पावर, पोजीशन और ओहदे में ऊपर ही रहूंगी। इशिका ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आया कि वो कब आयशा की मदद करने वाली थी जो उसके दम पर वो इतना उछल रही थी। इशिका ने कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दिया। इस बार आयशा ने कोई रिस्क ना लेते हुए डायरेक्ट डॉक्टर मर्चेंट का व्हाट्सएप ओपन किया और फिर वहीं से कॉल किया। इशिका ने कॉल रिसीव किया। उसने अपनी आवाज़ बदलने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा था जो खास उसने अपने लिए डिज़ाइन करवाया था। इशिका अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहती थी और उसके लिए ये ज़रूरी था। इशिका के कॉल रिसीव करते ही आयशा ने बेहद विनम्र आवाज़ में कहा, हेलो डॉक्टर मर्चेंट, मैं आयशा सिंघानिया बोल रही हूँ, राधिका सिंघानिया की बेटी। एक्चुअली हम चाहते हैं कि आप राजवंश एम्पायर की न्यू एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ज्वाइन करें। मॉम भी यही चाहती है। आयशा ने जानबूझकर राधिका का नाम लिया ताकि डॉक्टर मर्चेंट मना ना कर पाए। इशिका के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसने खुद को सख्त करके कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इशिका उसे अच्छा खासा सुनाना चाहती थी पर राधिका की वजह से वो शांत हो गई। उसने कुछ पल रुक कर कहा, मैं उन्हीं प्राइवेट कंपनी के लिए काम करती हूँ जो मिसेज राधिका सिंघानिया के अंडर आती हैं। आयशा आगे कुछ कहती उससे पहले इशिका ने कॉल कट कर दिया था। इशिका के लिए भले ही ये एक नॉर्मल कॉल हो, लेकिन आयशा की सारी उम्मीदें इस कॉल के साथ टूट चुकी थी। अगली सुबह मंडे होने की वजह से ऑफिस फिर से खुलने वाला था। रोहन ने बिल्लू को ऑफिस में लाने से मना किया था, तो इशिका ने उसे वसुधा के पास छोड़ा और खुद तैयार होने के बाद हॉस्पिटल के दरवाजे के पास खड़ी होकर टैक्सी का वेट करने लगी। उसने ब्लैक कलर की स्किनी पैंट्स और ऊपर बेज कलर का क्रॉप टॉप पहना था जो वन शोल्डर ऑफ था। इशिका टैक्सी के लिए कॉल करने ही वाली थी कि तभी वहां अभिमन्यु की गाड़ी आकर रुकी। उसने विंडो डाउन किया, इशिका की नजरें उससे मिली तो अभिमन्यु सख्त अंदाज में बोला, अंदर बैठो। इसकी जरूरत नहीं है मिस्टर राजवंश, मैं चली जाऊंगी, इशिका ने सादगी से जवाब दिया। वैसे भी उन दोनों के रिश्ते इतने भी अच्छे नहीं थे कि इशिका उससे लिफ्ट ले। मुझे दादी ने कहा है, वो चाहती है कि आप टैक्सी में परेशान ना हो और मेरे साथ ऑफिस जाएं, अभिमन्यु ने जवाब दिया। इशिका भी जिद्दी थी, वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली थी। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर आप उन्हें बोल दीजिएगा कि आपने मुझे ड्रॉप कर दिया है। कौन सा वो देखने आने वाली है? उन्हें सबूत के तौर पर फोटो चाहिए, अभिमन्यु ने कंधे उचकाकर कहा। इशिका के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अभिमन्यु ने उसके लिए अंदर से ही दरवाजा अनलॉक किया। इशिका उसके बगल में आकर बैठ गई थी। इशिका के पास बैठते ही अभिमन्यु ने अपना मोबाइल ऑन किया और दोनों की फोटो क्लिक करने लगा। इशिका ने अपना चेहरा अभिमन्यु के थोड़ा सा पास किया और मुस्कुराते हुए अपने हाथों से विक्ट्री साइन बनाया। फोटो लेते वक्त इशिका के बाल अभिमन्यु के मुंह पर आ रहे थे। अभिमन्यु ने फिर भी उससे कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर बिल्कुल छोटी सी स्माइल थी जो आसानी से दिखाई नहीं देती थी। अभिमन्यु ने उन दोनों की एक अच्छी सी फोटो क्लिक की। फोटो क्लिक होते ही इशिका उससे दूर खिसक कर बैठ गई और अपने मोबाइल में लग गई। वहीं पृथ्वी मिरर से उन्हें देख रहा था। वो मन ही मन बोला, लेकिन दादी ने तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। पूरे टाइम मैं उनके साथ था और उन्होंने किसी तरह का सबूत नहीं मांगा था, खास करके फोटो का। जरूर सर को कोई गलतफहमी हो गई होगी। पृथ्वी अभिमन्यु को लेकर कुछ ज्यादा ही लॉयल था। उसकी गलती होने पर भी वो अभिमन्यु में कमियां नहीं देख पाता था। पृथ्वी ने गाड़ी स्टार्ट की। पूरे रास्ते अभिमन्यु और इशिका ने बात नहीं की। हाँ, अभिमन्यु बीच बीच में इशिका को देख जरूर रहा था। कुछ ही देर में वो राजवंश एम्पायर की पार्किंग एरिया में थे, जहां से अभिमन्यु ने अपने लिए प्राइवेट लिफ्ट ली, जबकि इशिका एम्प्लॉयज वाली लिस्ट में R&D डिपार्टमेंट में जा रही थी। इस वक्त R&D डिपार्टमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में एक जरूरी अनाउंसमेंट किया जाना था, इसलिए सभी सीनियर्स वहां मौजूद थे।
R&D डिपार्टमेंट का हेड मैनेजर आगे आया और उसने तेज आवाज में कहा, आज की ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि मिस्टर नक्श राजवंश का प्रमोशन हो गया है। उन्हें जूनियर मैनेजर की पोजीशन पर प्रमोट किया जाता है। अचानक नक्श के प्रमोशन का सुनकर वो सभी चौंक गए थे। उनमें से एक ने हैरानी जताते हुए पूछा, लेकिन ये सब अचानक क्यों? अभी तो कोई प्रमोशन का टाइम नहीं है। मैनेजर ने जवाब में कहा, ऐसा इस वजह से किया गया है क्योंकि मिस्टर नक्श ने डॉक्टर मर्चेंट को हमारे साथ काम करने के लिए तैयार कर लिया है। हाँ, वो ऑफिस में आकर काम नहीं करेंगे, लेकिन उनका हमारे साथ काम करना ही काफी है। अब हम अपने इश्यूज पर उनसे हेल्प ले सकते हैं। जब चाहे उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे किसी भी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सब समझ गए थे कि नक्श का प्रमोशन उसकी काबिलियत पर नहीं बल्कि डॉक्टर मर्चेंट को वहां लाने की वजह से हुआ था। आगे किसी ने कुछ नहीं कहा तो मैनेजर फिर से बोला, सबके चेहरे पर 12 क्यों मजे हुए हैं? चलिए चीयर कीजिए। मिस्टर नक्श, आप आगे आकर अपनी स्पीच दे सकते हैं। नक्श खड़ा हुआ और तिरछा मुस्कुराते हुए माइक के आगे होकर बोला, थैंक यू सो मच, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। अब से दोनों टीम के सभी एम्प्लॉयज और उनके हेड्स मेरी बात मानेंगे और मुझे अपनी रिपोर्ट देंगे। बोलते हुए नक्श ने गर्दन टेढ़ी करके रोहन की तरफ देखकर कहा, उम्मीद है मिस्टर रोहन राजवंश, आप अपनी पोजीशन का गलत फायदा नहीं उठाएंगे और ना ही किसी भी रूल को ब्रेक करेंगे। रोहन, जो पहले से ही वीकेंड पर काम कर रहा था और काम न होने की वजह से इरिटेट था, वो गुस्से में सख्त आवाज में बोला, कंपनी का एक और रोल है, किसी भी टीम का हेड ही अपने सारे टीम मेंबर्स को हैंडल करता है, वहीं उन्हें काम देता है और उनके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। उम्मीद है कि आपको कोई काम देना होगा तो आप पहले मुझे कहेंगे और मेरे जरिए ही काम मेरी टीम तक पहुंचेगा। रोहन समझ गया था कि रोहन यहां इशिका के बारे में बात कर रहा था। उसका चेहरा सर्द हो गया। वो सख्त आवाज में बोला, मिस्टर राजवंश, लगता है आपसे अपनी टीम हैंडल नहीं हो रही है। आपकी टीम को थोड़े दिनों पहले एक इशू मिला था जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अगर वो काम आपसे नहीं हो रहा है तो आप दूसरी टीम को दे सकते हैं। आपकी वजह से बाकी लोग भी सफर कर रहे हैं। रोहन को अब गुस्सा आने लगा था। वो खड़ा हुआ और बोला, कोई और ये बात कहता तो फिर भी समझ में आता, लेकिन तुमने भी इसी फील्ड में स्टडी की है। तुम जानते हो कि कौन सा इशू कितना टाइम लेता है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम इसे चुटकियों में हल कर दोगे। मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई ऐसा मेरे पास है जो इसे सच में चुटकियों में हल कर सकता है। क्या आपको मेरी मदद चाहिए मिस्टर राजवंश? नक्श ने भौहें उठाकर कहा। वो यहाँ डॉक्टर मर्चेंट की बात कर रहा था जो उनके इशू को सच में चुटकियों में हल कर सकते थे। रोहन तिरछा मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता था कि आप इतने दयालु हो। रोहन और नक्श के बीच इस वक्त एक कोल्ड वॉर छिड़ी हुई थी जिसे बाकी एम्प्लॉयज चुपचाप देख रहे थे। रोहन नक्श का मजाक उड़ा रहा था और ये उसे कहां बर्दाश्त होने वाला था। नक्श ने सर्द आवाज में कहा, ठीक है ऐसा करो, उस इशू को मेरी टीम में भेज दो, हम उस पर काम करेंगे, लेकिन मुझे एक नए असिस्टेंट की जरूरत होगी। वो न्यू मेंबर कैसा रहेगा जो अभी अभी तुम्हारी टीम में शामिल हुआ है? बोलो, डील मंजूर है? रोहन ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बांध ली। नक्शशिका को परेशान करने के लिए उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। रोहन ने सख्त निगाहों से उसकी तरफ देखकर कहा, यहाँ कोई डील नहीं होगी, जो काम मुझे मिला है वो मैं ही करूंगा। ठीक है, तो फिर उसे दो दिन में पूरा करके दिखाओ, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारा डिमोशन कर दूंगा या फिर तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगा। फिर ये मत सोचना कि चाचू तुम्हें बचा लेंगे, नक्श ने अग्रेसिव वॉइस में कहा। ऐसे लग रहा था जैसे पिछले दो दिनों में नक्श ने रोहन को परेशान करने की पूरी प्लानिंग की थी ताकि वो इशिका को खुद से उसके पास भेज दे। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है मंजूर है। रोहन फिर वहां से अपनी टीम के काम करने वाले हिस्से में चला गया। अभिमन्यु चाहता तो रोहन की इस मामले में मदद कर सकता था, लेकिन नक्श आजकल कुछ ज्यादा ही बीच में टांग अड़ा रहा था। रोहन गुस्से में अपने केबिन में आया और अपनी चेयर पर जोरदार किक मारी। वो गुस्से में चिल्लाया, समझता क्या है ये अपने आप को, खुद को कुछ आता नहीं है और डॉक्टर मर्चेंट को यहाँ लाकर प्रमोशन तक हासिल कर लिया। शादी कर रहा है तो उसी के साथ खुश रहे ना, क्यों किसी दूसरी लड़की को परेशान कर रहा है? करेक्टरलेस यूजलेस ब्रैट, रोहन ने अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। उसके चिल्लाने की आवाज बाहर तक आई तो उसके टीम मेंबर्स थोड़ा घबरा गए थे। रोहन वैसे भी गुस्सा ज्यादा करता था, आज लक्ष्य काम पर थोड़ा लेट आया था तो उसे डर लग रहा था कि कहीं वो रोहन के गुस्से का शिकार ना हो जाए। लक्ष्य जल्दी से अपनी चेयर पर बैठा और खुद से बोला, लगता है आज हम सबकी शामत आई है, हे भगवान बचा लेना और जल्दी से उस इशू को सॉल्व करवा दो वरना इनका गुस्सा मुझे पर निकलना है। लक्ष्य ने जल्दी से अपना लैपटॉप ऑन किया तो उसको एक मेल आया। वो मेल इशिका ने दो दिन पहले उसे भेजा था जब उन्होंने उनके मेन इशू को सॉल्व कर दिया था। मेल देखते ही लक्ष्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो हड़बड़ाकर बोला, क्या इशिका सिंघानिया ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है? चलो रोहन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन लगता है कि नक्श इतनी आसानी से इशिका का पीछा छोड़ेगा नहीं। इसका इलाज या तो रोहन कर सकता है या खुद अभिमन्यु कुछ करेगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।